दिन भर तारीख 16 जुलाई दिन गुरुवार, मैं हूं विनीत खरे। भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर गोलीबारी का इल्जाम थोपा। भारत ने पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराए जाने के आरोप का खंडन किया।
ड्रोन जो है उसने हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की।
The photograph of the drone in question indicates that it is not of Indian design.
बिहार में भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू। सरकार ने जातिगत जनगणना को जारी करने का फैसला किया।
और ये लगभग 46 लाख कास्ट सब कास्ट नेम्स हैं, गोत्र वगैरह जिसकी डिटेल्स हैं।
असम में एक कारोबारी और उसकी बेटी की हत्या के विरोध में 36 घंटे का बंद। साथ में श्रोताओं के पत्र सुनिएगा आपकी राय में, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। पाकिस्तान का कहना है कि विवादग्रस्त कश्मीर क्षेत्र के पास स्थित गांवों में भारत की तरफ से हुई गोलीबारी में कम 4 नागरिक मारे गए हैं। सेना के एक वक्तव्य में कहा गया है कि भारत की तरफ से गोलीबारी बिना किसी उकसावे के की गई, लेकिन एक भारतीय अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान की तरफ से जवाबी गोलीबारी की गई। कल इस क्षेत्र में एक भारतीय सैनिक मारा गया था। भारतीय ड्रोन के पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में आने का विरोध जताने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त को भी बुलाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने सदन में एक नया कानून पेश किया है, जिसमें विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके को नया दर्जा देने के लिए संविधान में बदलाव लाने की बात की गई है। इन सुझावों के तहत सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और दोनेस्क और लुहांस्क के आसपास के इलाके को विशेष दर्जा दे दिया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति पोरोशेंको ने यह स्पष्ट किया कि इसमें रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति शामिल नहीं होगी। ये बदलाव मिन्स्क समझौते का हिस्सा है, जिसका मकसद सरकार और रूस समर्थन प्राप्त रोहियों के बीच संघर्ष को खत्म करना है। यूरोग्रुप इस बात पर सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गया है कि वह ग्रीस को $7 अरब का अल्पकालिक कर्ज देगा। इससे ग्रीस उस समय तक अपने वित्तीय काम निपटा पाएगा जब तक एक पूरे बेलआउट पैकेज को मंजूरी नहीं मिल जाती। यूरोपीय संघ का राहत कोष ये कर्ज देगा। कल इस प्रस्ताव पर बातचीत के लिए राहत कोष के सभी 28 सदस्यों की बैठक होगी। संवाददाताओं का कहना है कि इस कर्ज से ग्रीस के बैंक 3 हफ्तों बाद फिर खुल सकेंगे। बीबीसी से बात करते हुए विपक्षी दल न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद एना मिसेल असिमाकोपाउलू ने कहा कि अब इस पर तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।
We have to move forward and implement these reforms as quickly as possible because
हमें आगे बढ़ना है और इन सुधारों को जल्द से जल्द लागू करना है, क्योंकि सिर्फ यही मौका है जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सकते हैं। 6 महीने पहले तक उम्मीद थी कि हमारी अर्थव्यवस्था 3% की दर से बढ़ेगी, लेकिन अब हम मंदी से गुजर रहे हैं, बैंक बंद हैं, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ये थे एना मिसेल असिमाकोपाउली के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापानी संसद के निचले सदन ने एक विवादास्पद सुरक्षा विधेयक पास कर दिया है, जिसके तहत जापानी सेना विदेश में युद्ध लड़ने जा सकेगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी सदन ने इस तरह का विधेयक पास किया है। इसके लिए चीन ने जापान की आलोचना की है और कहा है कि वो ऐसा कोई कदम उठाने से बचे जिससे बीजिंग की सुरक्षा पर आंच आती हो। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सुरक्षा कानून में इन बदलावों की हिमायत की है ताकि देश नई चुनौतियों का सामना कर सके, खासकर चीन से। सोमालिया की सेना का कहना है कि देश के दक्षिण में एक ड्रोन हमले में 2 इस्लामिक चरमपंथी नेता मारे गए हैं। बारदीरे शहर के पास रहने वाले लोगों के मुताबिक उन्हें आज सुबह तेज धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। चरमपंथी गुट अलशबाब के लड़ाके तुरंत वहां पहुंच गए। बारदीरे उन शहरों में से है जिन पर अलशबाब का काबू है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिन भर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूं विनीत खरे। रूस के उफा शहर में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात और उसके बाद एक संयुक्त वक्तव्य के बाद उम्मीदें बढ़ी थीं कि दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होगा और सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति रहेगी, लेकिन एक बार फिर दोनों देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय पक्ष की ओर से फायरिंग में उसकी ओर 4 लोग मारे गए हैं, जबकि भारत के मुताबिक जम्मू के अखनूर इलाके में पाकिस्तानी फायरिंग में 1 महिला की मौत हो गई है। पाकिस्तान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। इस बारे में पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमिश्नर को तलब किया और विरोध दर्ज करवाया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खाजी खलीलुल्लाह का कहना था,
जानी नुकसान भी हुआ है और कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, और एक ड्रोन जो है उसने हमारी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और उसको मार गिराया गया पाकिस्तानी फौज की तरफ से। और इस के लिए इंडियन हाई कमिश्नर को आज दफ्तर खारजा बुलाया गया था।
और काजी खलीलुल्ला ने उम्मीद जताई कि उफा में दोनों देशों के बीच जो सहमति हुई थी उस पर अमल किया जाएगा।
आप जानते हैं कि इस मुलाकात से पहले 5 जुलाई को भी सीज फायर की जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी वायलेशन हुई थी, लेकिन उसके बावजूद जो है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, हमारी जो है कमिटमेंट है गुड नेबरली रिलेशंस को मेंटेन करने की, और जो भी डिसीशंस हुए हैं उफा में पाकिस्तान जो है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है।
ये थे पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काजी खलीलुल्ला। उधर भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के दावों को गलत बताया है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, उसमें बल दिया कि भारत की ओर से स्थिति संभालने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने पाकिस्तान में भारत के हाई कमिश्नर TCA राघवन और भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित दोनों से बातचीत की। ड्रोन मार्ग गिराए जाने के पाकिस्तानी दावे पर एस जयशंकर का कहना था,
द फोटोग्राफ ऑफ द ड्रोन इन क्वेश्चन इंडिकेट्स दैट इट इज नॉट ऑफ इंडियन डिजाइन नॉर ऑफ एनी UAV कैटेगरी।
एस जयशंकर कह रहे थे, ड्रोन की तस्वीर से इशारा मिलता है कि ये भारतीय डिजाइन नहीं है, न ही ये ऐसा कोई UAV यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल है जो भारतीय सेना के पास है। ऐसा लगता है कि इसका डिजाइन चीन का है और इसे खरीदा जा सकता है। ये थे एस जयशंकर के शब्द। BBC संवाददाता आसिफ फारूक इस वक्त टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, आपने सुना एस जयशंकर का क्या कहना था, पाकिस्तान की तरफ से क्या दलील दी जा रही है ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई काजी खलीलुल्ला की, मोटा मोटा क्या कहने की कोशिश कर रहे थे वो?
देखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत ने सीज फायर लाइन की वायलेशन की है, ना सिर्फ ये कि फायरिंग की है जिसमें मौत हुई है 4 लोगों की, बल्कि उसके अलावा उसने भारत में जासूसी की भी कोशिश की है, और जो पाकिस्तानी सेना की पोजीशन है कंट्रोल लाइन के ऊपर उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश की है। तो काफी सीरियस एलिगेशंस हैं और पाकिस्तानी अथॉरिटी जो है इस पर काफी परेशान भी हैं कि एक ऐसे मौके पे जबकि दोनों देश जो है वो टॉक्स को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की जो अगर स्टेप्स लिए जाएंगे तो उससे हो सकता है कि माहौल जो है वो खराब हो दोनों देशों के दरमियान।
जी, ये जो 4 लोगों के मरने की खबर है आसिफ, ये किन इलाकों से आ रही है, इसके बारे में जानकारी मिल पाई है?
ये पाकिस्तानी सेना के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने ये प्रेस मीज एक जारी किया है, और उनका ये कहना है कि उनमें से 3 लोग जो हैं वो जो सियालकोट के साथ जो वर्किंग बाउंड्री है वहां पर उनकी मौतें हुई हैं, और एक साहब जो है वो कश्मीर में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे होने वाली फायरिंग का वो शिकार हुए हैं।
इस्लामाबाद से ये थे BBC संवाददाता आसिफ फारूकी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर भारतीय प्रशासित कश्मीर में सेना ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने कई सीमावर्ती सेक्टरों में भारतीय इलाकों में मोर्टार शेलिंग की, जिसमें 1 महिला की मौत हो गई और 2 जवानों समेत 5 लोग घायल हो गए। गौरतलब है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
जम्मू में सेना और प्रशासन का कहना है कि अखनूर सेक्टर से जुड़े परगवाल और कानाचक क्षेत्रों में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या BSF के ठिकानों पर पाकिस्तानी रेंजर्स कल सुबह से ही मोर्टार शेलिंग कर रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक अभी तक एक 42 वर्षीय महिला मारी गई और 2 BSF जवानों समेत 5 लोग घायल हो गए। जम्मू के अक्सर सीमावर्ती क्षेत्रों में पिछले वर्ष अक्टूबर में दोनों देशों की सेना के बीच जमकर गोलाबारी हुई थी, जिसके कारण दर्जनों बस्तियों में डर की लहर फैल गई और हजारों नागरिकों ने अस्थायी रूप से पलायन किया। पुलिस का कहना है कि ताजा लड़ाई के बाद कानाचक और परगवाल क्षेत्रों में लोगों ने खेतीबाड़ी की गतिविधियां स्थगित कर दी हैं। अखनूर सेक्टर की सीमा पर ताजा तनाव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू यात्रा से 1 दिन पहले शुरू हुआ है। मिस्टर मोदी कल जम्मू में वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरधारी लाल डोगरा की पुण्यतिथि के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर पवन कोतवाल का कहना है कि लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी जा रही है।
इस वक्त जो है वो पीक सीजन है खेतीबाड़ी का, इस वक्त धान लगाने का सीजन है, तो अब उनको कहा जा रहा है कि भाई आप अंदर रहें, क्योंकि कोई पता नहीं है, क्योंकि कल भी उन्होंने जो कल हुई फायरिंग आज भी हो रही है फायरिंग, आज सुबह से बंद है मगर आज भी हुई, अब शाम को भी हो सकती है, तो वी आर टेलिंग पीपल की रिमेन इंडोर्स।
सैनिक अधिकारियों के मुताबिक अखनूर सेक्टर के कानाचक और परगवाल क्षेत्रों में सिधरवाल, भलवाल, भारेट, परगवाल, गरखाल और मालाबेला समेत दर्जनों गांव प्रभावित हैं, जहां बेहतर मानसून के बाद खेती बाड़ी का मौसम शुरू हुआ था। जम्मू के कई क्षेत्रों में फैली सीमा को भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन पाकिस्तान इसे वर्किंग बाउंड्री यानी अस्थायी सीमा कहता है। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूं
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर BBC की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा, पहला प्रसारण रविवार को दिन भर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
BBC हिंदी सेवा में आप सुन रहे कार्यक्रम दिन भर, मैं हूं विनीत खरे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने वायदा किया है कि अगर NDA सत्ता में आती है तो बिहार की जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे। पटना से सीटू तिवारी की रिपोर्ट।
बिहार विधान परिषद चुनावों के नतीजे सिर्फ JDU और राजद गठबंधन के लिए ही सबक नहीं बन रहे हैं, बल्कि NDA के नेता भी इन नतीजों से सबक ले रहे हैं। मालूम हो कि JDU RJD गठबंधन के हारने की बड़ी वजह दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में तालमेल का अभाव माना जा रहा है। शायद यही वजह थी कि गुरुवार को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं, विशेषकर BJP के कार्यकर्ताओं से NDA के उम्मीदवारों को जिताने के लिए दोगुनी मेहनत करने की अपील की। अमित शाह NDA के चुनावी रथ को हरी झंडी दिखाने पटना आए थे।
एकजुट होकर एक अपवित्र गठबंधन को उखाड़ कर फेंक दीजिए और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कहना, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं लड़ता है, जहां पर हमारे साथी पक्ष का प्रत्याशी लड़ता है, वहां भाजपा से ज्यादा मेहनत करकर साथी पक्ष को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिहार पर मेहनत।
NDA के सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में अमित शाह ने GPS सिस्टम से युक्त लगभग 100 रथ को रवाना किया। गठबंधन ने इस कार्यक्रम को परिवर्तन यात्रा का नाम दिया है। ये रथ बिहार के सभी 43,000 गांव, 534 ब्लॉक में ऑडियो वीडियो गीत, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चा और नुक्कड़ सभा करके मोदी सरकार की उपलब्धियां और नीतीश सरकार की नाकामियां गिनाएंगे। अमित शाह ने पटना के गांधी मैदान में मौजूद समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये रथ नरेंद्र मोदी का दूत होगा।
ये रथ कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए जा रहा है। ये रथ हर गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य को पहुंचाने के लिए जाने वाला है। ये रथ हर गांव में रोजगारी पहुंचाने के लिए जाने वाला है। ये रथ दुनिया भर के बिहारियों को फिर से एक बार बिहार के अंदर रहकर बिहार के विकास करने का एक मौका मिले, इस तरह के बिहार की रचना करने जाने वाला है और ये रथ नरेंद्र मोदी का दूत बनकर जाने वाला है।
इस कार्यक्रम में जातीय जनगणना का मुद्दा भी छाया रहा। नेताओं ने कहा कि NDA जातीय जनगणना को जारी करने के पक्ष में है। लोजपा सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 25 साल तक बिहार में पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इन मुख्यमंत्रियों ने बिहार के पिछड़े, दलित और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया।
किया है लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, यही राज किया है ना राबड़ी देवी, और कौन 25 साल से राज किया है? क्यों आज बिहार पिछड़ा हुआ है? क्यों आज उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है? जनगणना रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट, एनडीए जनगणना रिपोर्ट को लाएगी, लेकिन जिस दिन लालू जी जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा नीतीश जी, लोग आपके ऊपर में पत्थर फेंकने का काम करेंगे।
गठबंधन जल्द ही रथों की संख्या बढ़ाकर 260 करेगा। साफ है कि गठबंधन अपने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार किया जा रहा है, ताकि दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के जख्म राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण समझे जाने वाले बिहार राज्य से भरे जा सके। सीतू तिवारी, पटना।
सरकार ने जातिगत जनगणना को जारी करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछले कई महीनों से विपक्षी दल सरकार पर इसे जारी करने के लिए दबाव बना रहे थे। जातिगत जनगणना की समीक्षा के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है। दिल्ली से सलमान रावी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि जातीय जनगणना के पूरे होने का काम चल रहा है, जिसके बाद इसके सारे आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे।
जो उसकी डिटेल्स आती हैं, उसमें हर प्रकार के व्यक्ति, कोई कास्ट, कोई सब कास्ट, कोई नाम, कोई सिनोनिम, कोई सरनेम, कोई गोत्र, कोई क्लैन, और ये लगभग 46 लाख कास्ट सब कास्ट नेम्स हैं, गोत्र वगैरह जिसकी डिटेल्स हैं।
मगर उन्होंने कहा कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना पर अभी तक केंद्र को कोई जवाब नहीं भेजा है।
ये कोई 9-10 महीने पहले राज्य सरकारों को भेज दी गई थी कि उनको आप क्लब कीजिए, जैसे कास्ट के आधार पर कोई, मैं उदाहरण पे कह रहा हूँ कि कोई जाट समाज से है तो उसमें अलग अलग तरह की खाप के नाम भी होते हैं। कई बार कोई मलिक लिखेगा, कोई सोलंकी लिखेगा, कोई दूसरा लिखेगा, तो उनको क्लब करना ताकि हर राज्य अपनी डिटेल देता है। इस वक्त जो राज्यों के पास डिटेल है वो अपनी रिपोर्ट्स अब भेजेंगे। अभी तक मैं बतला दूं कि अधिकतर राज्यों ने, क्योंकि राज्यों को भी स्वाभाविक इसमें समय लगेगा, तो अधिकतर राज्यों ने अभी तक उसका रिस्पांस नहीं किया है।
केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर जातियों के डेटा को वर्गीकृत करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पानागढ़िया के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है। हालांकि जेटली का कहना था कि इस तरह की कमेटी के गठन का फैसला यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही लिया गया था, जो राज्यों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट का आकलन करने के बाद इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का काम करेगी।
ये 19 मई 2011 का ही निर्णय था यूपीए सरकार का कि केंद्र में एक सब कमेटी बनेगी जो इसको फाइनली कंपाइल करेगी और उसके बाद उसको सार्वजनिक किया जाएगा। और आज ये तय हुआ कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानागढ़िया की अध्यक्षता में एक कमेटी रहेगी जो इस कास्ट डेटा को क्लासिफाई करेगी और फिर जो उस उपयुक्त समय पर ये कार्रवाई जब पूरी हो जाएगी इसको सार्वजनिक किया जाएगा।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने तो केंद्र सरकार को इस रिपोर्ट को जारी करने की चुनौती भी दे डाली थी। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कई और भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें 295 ऐसे अप्रयुक्त कानून हैं जिन्हें निरस्त करने का भी फैसला लिया गया। इसके साथ ही ई कोर्ट के दूसरे चरण के लिए 1670 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा 400 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना, 6 लेन की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे योजना, 8500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विद्युत प्रसारण की अंतर राज्य योजना को भी मंत्रिमंडल की सहमति मिल गई है।
कई निर्णय थे आज जो मंत्रिपरिषद में हुए, मैं 3-4 प्रमुख निर्णय आपको बतला देता हूँ, बाकी नोट आपको मिल जाएगा। 400 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इस रीडेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होगी वो स्विस चैलेंज मेथड होगा।
हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव के पहले जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जा सकता है, मगर राज्य सरकारों की तरफ से हुए विलंब की वजह से ये एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
और अब आपकी राय।
स्वागत है आपका आपकी राय में। मैं और मेरे साथ मौजूद हैं इंदु पांडे। इंदु पांडे, आज हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं?
शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे खत से जिसमें छोटी सी शिकायत है, तो मैंने सोचा कि पहले इसी को ले लिया जाए।
भाई, मैं तो ये कहूँगा कि चाहे शिकायत छोटी हो या बड़ी हो, शिकायत शिकायत है, और अगर शिकायत है तो उसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं।
इसे इग्नोर तो किया नहीं जा सकता।
बिल्कुल नहीं किया जा सकता।
लिखा है कि 1971 से जब भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए युद्ध चल रहा था, तब से मैं आपका नियमित श्रोता रहा हूँ। आपके निष्पक्षता, तथस्थता, सटीक टिप्पणियों एवं सबसे प्रथम सूचना देने का कायल रहा हूँ। मुझे दोनों समय बीबीसी सुने बिना चैन नहीं पड़ता। आपकी इन सभी विशेषताओं के लिए धन्यवाद। ये हमें चिट्ठी आई है अलवर से रामचंद्र यादव जी की, जो कि एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और लिखते हैं।
आप कह रही थी कि शिकायत की चिट्ठी है, शिकायत तो अभी तक आई नहीं।
बस इन्होंने बहुत ही अच्छे तारीफ के बाद शिकायत लिखी है। कहते हैं कि पिछले एक साल से जब से नरेंद्र भाई मोदी ने सत्ता संभाली है, आपका प्रसारण विशेष करके पिछले 2-3 महीनों से सिर्फ एक ही एजेंडे पर स्थिर हो गया है। आप केवल और केवल मुस्लिम और ईसाई तुष्टिकरण की बातें करते हैं।
रामचंद्र यादव जी, सवाल मेरा यह है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम तटस्थ नहीं हैं? और जहां तक बीबीसी की एडिटोरियल पॉलिसीज की बात है, हमारी संपादकीय नीति की बात है, हम जो सच्चाई है वही आईना आपको जनता को दिखाने का काम करते हैं। अगर खबर कहीं पर है तो जैसी खबर है, जिस अवस्था में खबर है, वो हम आप तक परोस देते हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको लगता हो कि हम मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। हर तरह की खबर को हम पर्याप्त स्थान देते हैं और कायदे से हम तटस्थ रहते हैं। और यदि आप इस तटस्थता की बात कर रहे हैं तो अभी हमने एक नई विशेष श्रृंखला शुरू की है, फैला उजियारा, जिसमें कि पहला एपिसोड जो है वो हमने गौतम बुद्ध पर प्रसारित किया था। इसे आप क्या कहेंगे? अगली चिट्ठी,
अगली चिट्ठी है बजरंग लाल चौधरी साहब की। लिखते हैं कि इस समय 15 तारीख के शाम के 9 बज चुके हैं और बीबीसी हिंदी 14 तारीख का दिन भर सुना रहा है। आप कहते हैं कि प्रसारण की रिकॉर्डिंग अगले 24 घंटों तक bbchindi.com पर उपलब्ध रहती है, परंतु अब तो 24 घंटे से 1.5 घंटा ऊपर हो गया है।
बजरंगी भाई, एक बात हम ये कहना चाहेंगे कि जब हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, यानी कि 7:30 बजे का वक्त हो या फिर हमारी दूसरी सभा हो या पहली सभा हो, अगर आपने 7:30 बजे से पहले अपने मोबाइल को ऑन कर दिया है और वो प्रोग्राम लाइव नहीं है, तो आपको पुराना कार्यक्रम ही सुनाई देगा। इसलिए जब आपको लाल रंग का लाइव दिखने लगे, उस पर क्लिक कीजिए। इसका मतलब यह कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे। और रही बात रिकॉर्डेड प्रोग्राम की, उसको हम एक बार देख लेते हैं। हालांकि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 15 या 20 मिनट में वो कार्यक्रम अपडेट हो जाते हैं।
और ये हैं राजेंद्र चौधरी जोधपुर राजस्थान से। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का IPL पर फैसला आया, उस दिन विनीत खरे घटना चक्र प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने पूर्व उच्च न्यायाधीश RM लोढ़ा के नाम का उच्चारण ठीक नहीं किया, उन्होंने कहा लोधा और उनको अच्छा नहीं लगा।
शिकायत जायज है, खासकर हम लोग बड़ी सावधानी बरतते हैं यदि किसी का नाम उच्चारण करना हो। अगर ये गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं। और कई बार हम भी इंसान हैं और हमारी भी जबान फिसल सकती है, इसलिए अगर जबान फिसली है, शब्द बदला है, तो उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन ख्याल रखेंगे इस बात का।
रिजवान अंसारी सुपौल बाजार दरभंगा से कहते हैं कि बुधवार को नितिन श्रीवास्तव का सानिया मिर्जा से बातचीत सुन करके दिल बाग बाग हो गया। नितिन जी के प्रश्न जहां रोचक थे, तो वहीं सानिया के उत्तर दिल को छू लेने वाले थे। आगे दुनिया जहान में निखिल रंजन की इन्होंने तारीफ की है।
निखिल रंजन के कार्यक्रम की आजकल बड़ी तारीफ आ रही है और हर हफ्ते निखिल रंजन दुनिया जहान पेश करते हैं, और इस बार भी उन्होंने जो कार्यक्रम किया उसकी बड़ी तारीफ आई। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से पत्र लिखते रहें। और आपने जो बधाई दी है नितिन श्रीवास्तव को, वो बधाई हम भेज रहे हैं उन्हें।
और ये हैं जीवन कुमार शाह, कहते हैं कि भाई मैं 23 साल से BBC हिंदी सुनता आ रहा हूँ और UP के खीरी जिले के सटे हुए नेपाल के अत्तारिया का बासिंदा हूँ। और आपका कार्यक्रम, इसके बारे में इनका कहना है कि भाई मैं पहली बार
की बात कर,
जी हाँ, कहते हैं कि पहला कार्यक्रम भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित था जिसमें बुद्ध को भारत में जन्मा हुआ बताया गया था, जो सरासर गलत है।
जीवन कुमार शाह जी, ये जो श्रृंखला आप सुन रहे हैं इनकार्नेशन मूल सीरीज है ये, और इसका हिंदी अनुवाद हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसका नाम हमने फैला उजियारा दिया है। रही बात पहले कार्यक्रम के संदर्भ में, तो उस समय ये लगभग 2500 साल ईसा पूर्व की बात है। उस समय तक राष्ट्र राज्य का जो कॉन्सेप्ट था, जो विचारधारा थी, वो उस समय तक नहीं आई थी। कार्यक्रम में हमने ये कहा कि भारत की सीमा के पास नेपाल में, और उस समय तक सीमाओं का इतना ज़्यादा विभाजन नहीं था, निश्चित तौर पर गौतम बुद्ध का जन्म आज के नेपाल में हुआ था, लेकिन उस समय 2500 साल पहले ये सीमाएं कहाँ थी। तो फिलहाल आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक मोहनलाल शर्मा
और इंदु पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
असम के तिनसुकिया जिले में मंगलवार को हुई एक कारोबारी और उसके बेटे की हत्या के विरोध में 36 घंटे का बंद बुलाया गया है। इस बीच पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने हमलावरों की धरपकड़ के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती जंगलों में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। ज्यादा जानकारी के लिए कुछ देर पहले वात्सल्य राय ने गुवाहाटी में स्थानीय पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा से बात की।
पाक के हिंदी वासियों पर हमले के बाद तिनसुकिया जिले में 36 घंटे का बंद बुलाया गया है। ये बंद भोजपुरी युवा छात्र परिषद की तरफ से बुलाया गया है। इस बंद का असर तिनसुकिया शहर के अलावा इसके आसपास के इलाकों पर पड़ा है। व्यापारियों में काफी गुस्सा है। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों के लोगों को तैनात किया गया है। साथ ही उल्फा के खिलाफ सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान असम अरुणाचल सीमावर्ती इलाकों में अभी अभियान चला रहे हैं। अभी मेरी बात हुई थी पुलिस IGP कानून व्यवस्था से, उन्होंने कहा कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि उल्फा इस तरह के हमले और कर सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने खास तौर पर तिनसुकिया जिले की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
तिनसुकिया के अलावा क्या किसी और जिले पर भी सुरक्षा को लेकर व्यवस्था चौकस की गई है?
उल्फा का जो धड़ा अभी जो वार्ता विरोधी धड़ा है उसके कैडरों की सक्रियता खासतौर पर ऊपरी असम में है, जिनमें ज्यादातर तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, इन चार जिलों में उल्फा के कैडर काफी सक्रिय हैं। शुरुआती तौर पर तो ये बताया जा रहा था कि पुलिस की तरफ से जानकारी मिल रही थी कि उल्फा व्यापारियों से काफी धन उगाही के लिए व्यापारियों को फोन पर SMS और फोन के जरिए व्यापारियों से धन उगाही की डिमांड कर रहा था। ये जो ताजा तकनी है उल्फा ने जो तिनसुकिया जिले के टेंगरी इलाके में जहाँ एक हिंदीवासी व्यापारी और उसकी बेटी की हत्या कर दी है, पुलिस का कहना है कि अभी नगाव विद्रोही संगठन NACMK ने जो संयुक्त मंच बनाया है पूर्वोत्तर के 4-5 उग्रवादी संगठनों को लेकर, इनमें उल्फा का परेश बरुआ गुट भी शामिल है।
ये थे गुवाहाटी से स्थानीय पत्रकार दिलीप कुमार शर्मा और खेल समाचारों के लिए राखी शर्मा स्टूडियो में हैं। राखी बताएं।
जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एशेज सीरीज लॉर्ड्स टेस्ट में शुरू दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1 विकेट खोकर 180 रन बना लिए हैं। क्रीज पर क्रिस रॉजर्स 73 और स्टीवन स्मिथ 59 रन बनाकर मौजूद हैं। रॉजर्स ने अपने टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक पूरा किया और स्मिथ का ये 12वां अर्धशतक है उनके टेस्ट करियर का। इसके अलावा क्रिस रॉजर्स की बात की जाए तो पिछली 9 पारियों में ये उनका 8वां अर्धशतक भी है, जो बताता है कि कितनी कंसिस्टेंसी से वो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आउट होने वाले इकलौते बल्लेबाज डेविड वार्नर रहे ऑस्ट्रेलियाई पारी में, जिन्हें 38 रन के निजी स्कोर पर इंग्लैंड के स्पिनर मोइन अली ने आउट किया। मोइन की फिटनेस को लेकर मैच से पहले सवाल उठ रहे थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम आज बिना किसी बदलाव के उतरी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम में 2 बदलाव हुए हैं। विकेट कीपर ब्रैड हेडन की जगह पीटर नेविल और ऑलराउंडर शेन वॉटसन की जगह मिचेल मार्श को शामिल किया गया है। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 169 रन से जीता था और आज लॉर्ड्स टेस्ट की बात की जाए तो जो पहला सत्र है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम कहा जा सकता है, क्योंकि लंच ब्रेक तक 104 रन बना लिए थे इस टीम ने 27 ओवर के सत्र में और मेहमान टीम ने सिर्फ 1 ही विकेट डेविड वार्नर के रूप में खोया था। तो क्रिकेट की दूसरी खबर की बात करते हैं। बांग्लादेशी टीम इन दिनों अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेल रही है। कल इस टीम ने अपनी लगातार 4थी घरेलू सीरीज जीती। दक्षिण अफ्रीकी टीम कागजों पर काफ़ी मजबूत समझी जा रही थी, लेकिन बांग्लादेश को उसकी धरती पर हराना अब किसी भी टीम के लिए बेहद कड़ी चुनौती बन गया है। दक्षिण अफ्रीका को भी बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-2 से गंवानी पड़ी। आखिरी मैच में बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया और मुस्तफिजुर रहमान की 2 और शकीबुल हसन की 3 विकेट की बदौलत बांग्लादेशी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन पर रोक दिया था। जवाब में मेज़बान टीम ने लक्ष्य 26.1 ओवर में हासिल कर लिया। 90 रन की पारी के लिए बल्लेबाज सौम्य सरकार को मैन ऑफ द मैच और इसके अलावा सीरीज में सबसे ज्यादा 205 रन बनाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी दिया गया। इसके अलावा एक और सीरीज चल रही है श्रीलंका और पाकिस्तान की, जहां 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में श्रीलंका ने दूसरे मैच में जीत हासिल कर 1-1 से सीरीज बराबर कर ली है। तो ये मैच श्रीलंका की टीम ने 11 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया था। लक्ष्य दिया था बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था टीम के सामने और जो सीरीज का तीसरा मुकाबला है वो 19 तारीख को कोलंबो में खेला जाएगा।
शुक्रिया राखी शर्मा। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। पाकिस्तान का कहना है कि विवादग्रस्त कश्मीर क्षेत्र के पास स्थित गांवों में भारत की तरफ से हुई गोलीबारी में कम से कम 4 नागरिक मारे गए हैं। कल इस क्षेत्र में एक भारतीय सैनिक मारा गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने सदन में एक नया कानून पेश किया है, जिसमें विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाके को नया दर्जा देने के लिए संविधान में बदलाव लाने की बात की गई है। यूरोग्रुप इस बात पर सैद्धांतिक तौर पर राजी हो गया है कि वह ग्रीस को $7 अरब का अल्पकालिक कर्ज देगा। जापानी संसद के निचले सदन ने एक विवादास्पद सुरक्षा विधेयक पास कर दिया है जिसके तहत जापानी सेना विदेश में युद्ध लड़ने जा सकेगी। सोमालिया की सेना का कहना है कि देश के दक्षिण में एक ड्रोन हमले में 2 इस्लामिक चरमपंथी नेता मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। स्टूडियो संभाला था हेमंत कुशवाहा ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी 1.5 घंटे बाद घटना चक्र में।